कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
ऐसे महंगे मोल का एक सांस भी जावे और तीन लोक नहीं पटतरे क्यों धूल मिलावे। पटतरे मन बराबर नहीं, आप नित्यनियम में भी पढ़ते हो, अपने नित्यनियम के अंदर आपको बहुत कुछ विज्ञान है, विज्ञान माने तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। और इस ज्ञान को आप केवल एक रूटीन में पढ़ लेते हो कि हमने ये एक पढ़ना है, प्रतिदिन नित्यनियम करना ही करना है, लेकिन एक व्यवस्था बनाकर नहीं इसको प्रतिदिन करना चाहिए। जितनी देर भी इसको सुनो, किसी भी पार्ट को, इसके नित्यनियम का जितना भी बुद्धि मन निश्चल हो तेरा आपका, तो ये विचार करे कि इसमें क्या बोला है मालिक ने अपनी वाणी में, क्या आदेश है तेरे लिए। क्योंकि आप पौन घंटा नित्यनियम करते हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका मन 20% इस नित्यनियम के अंदर आप 20% ही सुन पाते हो। उस 20% को भी यदि आप विचार करो डेली कि इसमें क्या आदेश है मालिक का, और फिर अपने जीवन को सारा दिन उस दिन को ऐसे ही सुचारू रखो, क्योंकि आपको घर से निकलने से पहले ये पढ़ा इसलिए जाता है कि आपके साथ रास्ते में कोई निकम्मा भी टकराओगा, कोई गाली देने वाला भी मिलेगा, कोई बुंडा भी बोलेगा, कितने कोई आंट भी लाएगा, तो उनके साथ आपने कैसे व्यवहार करना है। आवत गाली एक है, उल्टा हुआ अनेक, और कह कबीर ना उलटियो वा रहे एक की एक। इसको पढ़ना पढ़ना नहीं है। मान ले कोई बुंडा बोला है, गलत बोलता है, गाली देता है, तो वो तो उसने तो कर दिया यू काम, और आप भी उल्टा दोगे तो फिर चार और देगा, क्यों तो पूरे मूड में है, वो तो फुल मूड में है लड़ाई के में, और आप भी आगे से उल्टी बोल पड़ोगे तो वो तो तैयार बैठा है, जब बरसात क्या उनका मुकदमा, रोज कर ले चाहे जन्म गए। तो कहते परमात्मा आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, और कहे कबीर ना उलटियो रहे एक का एक। और देख आगे कितनी प्यारी बात कही है, गाली ही से उपजे कलह, कष्ट और मौत, मृत्यु तक तो पहुंच जाती है एक छोटी सी गाली। गाली ही से उपजे कलह, कष्ट और मीच, हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। हम भगत भी हैं और दूसरा हमें बुंडा अच्छा बोल रहा है, और उसने मान लिया को नीचे किस कह दिया, हमने उसका दो दड़ाक धर दिए, उल्टे भी बोल दिए, फिर वो मारण पर उतारू हो गए, फिर हमने उठोक दिया। हो सकता है आप उसे तगड़े भी हो और अच्छा भी संवार दो, फिर आप में उसमें कसर के रहेगी। आप तगड़े भी हो और आपसे हल्का आदमी भी आपने बुढ़ा अच्छा बोला है, उसने बालक समझ के अनजान है, उससे बचो। तो इन नित्यनियम करने का डेली हमें जो पाठ करते हैं, इससे ज्ञान यज्ञ तो होता ही है। ज्ञान यज्ञ के साथ हमने समाधान भी इसका साथ पैरल करना पड़ेगा, तभी इसके पढ़ने का लाभ है। एक लाभ तो हो गया ज्ञान यज्ञ का, और उसके ऊपर अमल हमने किया नहीं, उसका काम फिर सारा बिगड़ गया। तो कहती ये बातें कहन सुन के नहीं भाई, ये कृपाणन की है। पुण्यात्मा प्रसंग चल रहा है कि मन तू भाई सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजम के पड़ा जंजीरम। अब जैसे सर्व सोने की यानी रावण के पास सारी सोने की लंका थी पूरी, और उसके बाद भी उसकी के दुर्गति हुई, इसलिए ये जो संसारिक सुख आप प्राप्त कर रहे हो इस संसारिक सुख की ही आशा में आप जी रहे हो, तो ये जीवन भी आपका व्यर्थ है। ये जीवन भी आपका व्यर्थ है। तो क्या बताना चाहते हैं, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा दसरे। और उस पूर्ण परमा उसकी भक्ति यानी सुख का सागर कैसे मिलेगा, पूर्ण परमात्मा की भक्ति हो। और पूर्ण परमात्मा की भक्ति कब होगी, जब परम संत मिलेंगे, तत्वदर्शी संत मिलेंगे। तो क्या बताते हैं, यो जीव भूल्या ब्रह्म को विकृताई बकवाद आन उपासा करते हैं क्योंकि मिले न सतगुरु साध। यो जीव भूल्या पूर्ण ब्रह्म को, ये जीव पूर्ण परमात्मा को भूल चुका है, और विकृताई बकवाद यानी जो भी ये कर रहा है ये सारी यूजलेस हैं, बकवाद माने व्यर्थ, व्यर्थ की क्रियाएं, व्यर्थ की कहानियां। यो जीव भूला पूर्ण ब्रह्म को विकृताई बकवाद अन उपासा करते हैं मिले न सतगुरु साध। अन्य उपासनाएं करते हैं, आन उपासना माने अन्य, एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति को छोड़कर जो और उपासनाएं आप करते हो वो आन उपासना है। हुज्जत हरस हराम गति विकृताई ये जाने, लाया ता लागे नहीं समझे नहीं हैवान। अब विकृताई यानी जिसके अंदर बकवाद भरी हुई है उसकी के पहचान बताते हैं कि वो सारी उसको समझाने की चेष्टा भी करते हैं तो भी वो जहां हम लगाना चाहते हैं उसको जिस भक्ति मार्ग पर उसको लगता नहीं, ये बकवादी आदमी की पहचान होती है। हुज्जत हरिस हराम गति ही विकृताई ये जान, लाया ता लागे नहीं समझे नहीं हैवान। वो हैवान व्यक्ति है जो सत व्यक्ति को ग्रहण नहीं करता। चल जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक तो हम डले ढो ही रहे थे, आप अपनी साधनाएं कर ही रहे थे और उनको अपनी अच्छी अच्छी साधनाएं मानकर हम करते थे। और जो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताने वाले संत हैं उनके विषय में क्या बताते हैं, जो आर्य की गाय है बिन छेड़े अरड़ाए, विकृताई नरमानवी ही बिन ही ज्ञान डडाए। जैसे गाय को, गाय को बांध देते हैं कसाई लोग और उसको पता लग जाता है कि तेरे को काटेंगे मारेंगे ये, तो बेचारी निकट आते ही डड्डान लग जाएगी बुरी तरह, अपने आप बिना छेड़े ही वो रामने लग जाती है, रोती है, डड्डाती है बुरी तरह। तो ऐसे ही कहते हैं ये व्यक्ति जो ज्ञानहीन संत हैं इतने लंबे लंबे प्रवचन करेंगे, डांटे नहीं डटाए पुरानी के की अड़गम सड़गम कितनी कथाएं सुना डालेंगे, क्या बताते हैं, जो आरे की गायें हैं बिन छेड़े अरड़ाए, बिक्रताई नरमानवी बिन ही ज्ञान डिडावे। डिडाना माने ठंड ठंड बोलना, अभी मतलब बढ़ने जा। फुटे नग का मोले क्या कौड़ी बदले जाए, बिक्रताई नरमानवी संतों देख रिसाए। अब जो निकम्मी आत्मा उनकी पहचान बताते हैं कि संत, यदि संत वही होगा जो सच्ची कहेगा, और ये नहीं देखता कि आदमी नाराज ना हो जाए कहीं ये कह दूं तेरी साधना गलत है बेटा भाई बच्चा। तो संत सच्ची कहा करे, नहीं तो बोल रहे नहीं, उसको आवश्यकता नहीं फिर प्रचार करने की या कोई ज्ञान बताने की। और उन उस संत को जो सत्य कहता है और अनमोल मनुष्य जीवन की रक्षा करता है, उसको देखकर भी जो विरोध करते हैं वो दुष्ट आत्मा बताए, ये पहचान है उनकी। मोती नवा ला लीजिए बंतर के गल घाल, तोड़े तागा जान कर विक्रताई की चाल। कहते हैं जैसे बंदर के गल में मोती की माला गाल दे, मोतियों की कीमती, वो पकड़ कर तोड़ कर फेंक देगा। ऐसे ही जो निकम्मी टाइप की आत्माएं हैं उनको यदि आप बोलो सलो के ले भी आते हो यहां और उपदेश दिला देते हो, वो रखेंगे नहीं, ऐसे तोड़कर फेंक देंगे, वो पाप आत्मा है। राम कहे राजी नहीं ये लंगर सोखा ठील, साहेब दरबौ दोष है भरमा फरे खलील। और दूसरी पहचान बताते हैं कि यहां सत्संग यथार्थ स्थल पर आएगा तो यहां तो 100 दोष निकाल लेगा अपने मन में, ये ऐसे करते हैं यहां ऐसे करते हैं, और धक्के खाता अंडे जाना जो कि पहाड़ों पर पर्वतों पर। राम कहे राजी नहीं ये लंगर सो खटील, साहेब दरबौ दोष कहे और भरमा फेरे खलील। यो मन भूल्या पूर्ण ब्रह्म को दुनिया देखन जाए, और चोरी में चित देते है सुन सुन भक्ति रिसाए। आप तो निरे खोटे काम करे, और जहां ये आ जाक बरवाड़ा में संत रामपाल जी बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, तो फिर उस फिर हमने 100 गाल सुना दे, और आप सारे खोटे कर्म करे दिन में कोई भी आंट नहीं किसी कर्म की। ऐसे व्यक्ति भी संतों में दोष निकाल देते तो उनको विकृताई कहते हैं, दुष्ट आत्मा बोली जाती है। अब क्या बताते हैं, भाई जन्म जन्म की वासना हुई इकट्ठी आन, निर्मल कैसे होएगा कोई सतगुरु लगे न कान। अब जो ऐसी निकम्मे टाइप की आत्माएं हैं, तो हम सभी ऐसे ही थे जब तक हम इस परमात्मा के तालाब पर नहीं आए थे, इस धोबी घाट पर नहीं आए थे। इस परमेश्वर के तत्व ज्ञान ने हमारे अंदर के वह मैल काट दिए जो हमारे अंदर दोष थे। और जो व्यक्ति यहां नहीं आते, दूर दूर सुने सुनाए से अच्छी मंदी बोल रहे हैं, उनके विषय में कहते हैं कि युगन युगन की वासना और वही इकट्ठी आन, जैसे संचित कर्म है युगों युगों के इकट्ठे जमा हो रहे हमारे अंदर। और भाई निर्मल कैसे होगा कोई सतगुरु लगे नहीं कान, सतगुरु लगे नहीं कान है। जब तक परम संत नहीं मिलेंगे तो हमारे अंदर के दोष समाप्त कैसे होंगे। साबुन और जल का जब तक योग कपड़े पर नहीं होगा उसका मैल कटेगा कैसे। अब क्या बताते हैं, जिस मंडल साधु नहीं और नदी नहीं गुंजार, तज हंसा वो देसड़ा जमकी मोटी मार। जिस मंडल जिस क्षेत्र में संत नहीं है वो ऐसा देश है जैसे जिस मंडल में जिस ऐसा इलाका है जहां पर नहर ना हो, दरिया ना हो, तो जैसे उस क्षेत्र में जाने का कोई यूज नहीं, भूखा मरना है, ऐसे ही जिस साधना को तू कर रहा है, जिस भी संत के पास तू बैठा है वो संत नहीं है, जिस ग्रुप में तू चला गया है, उस देश को, उस ग्रुप को, उस गुरु को त्याग दे। जिस मंडल साधु नहीं, जैसे नदी नहीं गुंजारे, तज हंसा वो देसड़ा यम की मोटी मार। फिर क्या बताते हैं, छह ऋतु बारह मास में नहीं कुलाहल राग, जे नगरी क्या रहन है कोयल कूक न बाग। छह ऋतु बारह मास में और नहीं कुलाहल राग। अब जैसे अच्छा अक्षेत्र है, खूब उसमें सिंचाई होती है, अच्छे धन हो जाता है, तो वहां पर फिर खुशी के राग गाए जाते हैं, ब्याह शादियां होती हैं तो वो मंगल गाते हैं, यानी वो खुशहाली में अपना उस खुशी मनाते हैं। छह ऋतु बारह मास में जहां नहीं कुलाहल राग, जे नगरी क्या रहन है जहां कोयल कूक न बाग। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की वाणी जो है हमें सत्स भक्ति मार्ग से ही तोलती है। उदाहरण के अर्थ हम अन्य प्रमाण लेते हैं कि जैसे जिस क्षेत्र में कहीं साल छह महीने में भी कोई सत्संग ढंग का ना होता तो वो जीव सुखी कैसे होंगे, उनकी आपत्तियां टलेंगी नहीं, टलेंगी नहीं। रोज किसी के कुछ हो रहा है, किसी के भाई मर गया, किसी की मां मर गई, किसी का बालक बीमार है, तो वो खुशी मना ही नहीं सकते। जैसे जहां जिस क्षेत्र में दरिया नहीं है, यानी पानी का साधन नहीं है, तो सुखी हो ही नहीं सकते, उनको तो रोटी की सांसा पड़ी रहेगी, सारा दिन खुशी की तो बात बहुत दूर है। ऐसे ही जहां संत नहीं जाते वो अक्षेत्र ऐसा जानो जैसा नदी रहित अक्षेत्र है। छह ऋतु बाग नहीं, बेला नहीं, नहीं नदी जिस देश, वहां दुनिया कैसे बसे जहां संत नहीं प्रवेश। अब यहां बता दिया उस किस उद्देश्य से बोल रहे हैं ये वाणी, कि जहां पर बाग नहीं और बेला यानी बेल नहीं चढ़ रही, यानी जैसे अंगूर की बेल, फल फूलों की बेल और भी इस तरह के, खुशी वहीं होगी जहां पर पर्याप्त पर्याप्त जल होगा। तो जैसे जहां ऐसा नहीं है तो वहां दरिया नहीं है, ऐसे ही जो देश सुखी नहीं हो सकता, वो क्षेत्र सुखी नहीं हो सकता जहां पर संत जैसी दरिया वहां नहीं पहुंचती, यानी संत परम संत पूर्ण संत नहीं होंगे तो वहां के व्यक्ति ऐसे दुखी रहेंगे जैसे दरिया जल के बिना प्राणी। यज्ञ नहीं जो नार नहीं, सदा व्रत नहीं सीले, हे जा मंडल क्या रहन है वो बसे पर्वती भील। जिस क्षेत्र में ऐसे यज्ञ नहीं होते तो वहां जाने, वहां वहां के लोग मानो नहीं होते, उनको तो ऐसे समझो जैसे पर्वती भील, वो कोई आगा पीछा नहीं देखे, लूट लें, खसोट लें, मौका लग दे, पाप कर्म कर दे। तो जहां तत्व ज्ञान रूपी वर्षा नहीं होती, संत रूपी दरिया जहां नहीं बहते, तो वो व्यक्ति कोई भी आगा पीछा नहीं देखेंगे पाप कर्म में, मौका लग दे तो कितने अच्छे नजर आते रहे और समय लगने पर कोई पाछा नहीं रहेगा, तो पीछे वही रहेगा, हाथ उसी का उल्टा हटेगा। पाप तो जिसको ज्ञान हो जाएगा, जो संत की शरण में रहेगा, वो पाप नहीं कर सकता, चाहे भूखा मरो। हंस दिशा जा मनुष्य है ज्ञान विवेक विचार, सतगुरु भाषा समझ ले यो हमारा परिवार। हंस दिशा जा मनुष्य है। हंस किसे कहते हैं? हंस एक पक्षी होता है जो जैसे तालाब पर कहीं चला जाता है, झील पर, वहां मछलियां नहीं खाता और ना ही वो कीड़े मकोड़े खाता, और उसी के पैरेलल उसी जैसा सेम हम सकल सेम टू सेम एक बुगला होता है। हंस जैसी ही सकल वैसा ही पक्षी, और वो जाते ही मछली ठहगी मछली खा ली, घोगे ठहगे घोगे फोड़ के खा लिए, वो गोल गोल शंख ले से होया करे, और कोई भी जीव जंतु पा गया वो बुगला उसी समय खाना प्रारंभ कर देता है। लेकिन हंस मांसाहारी नहीं होता, वो नहीं खाता, वो केवल मोती खाता है, और दूध के अंदर मान ली 1 किलो आप शुद्ध कति प्योर दूध है और उसमें पाइया पानी डाल दो 250 ग्राम और हंस के सामने रख देना, उसको उसमें ऐसी कुदरती क्रिया दी है मालिक ने, ऐसा केमिकल है उसके उसके उसमें ऐसी उसकी जीभ में, वो दूध रह जाए, पानी छोड़ देगा, दूध दूध को पी लेगा, पानी अलग रह जाएगा उसका। दूध और पानी छान लेना, दूध और पानी को अलग अलग कर लेने का तात्पर्य यह है कि हम बुद्धिमान व्यक्ति जो भक्त हैं ये हंस दिशा में आ जाते हैं, हंस स्तर पर आ जाने चाहिए। इनको हर तरह से सोच लेना चाहिए पाप और पुण्य की स्थिति को, कि आप जो ये हंस जो होते हैं वो पाप नहीं करते, पुण्य पुण्य करते हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते, भला भला करते हैं, ये बट नेचुरल हो जाना चाहिए उन्हें, वो हंस होते हैं। तो यहां कहते हैं हंस दिशा जा मनुष्य हैं और ज्ञान विवेक विचार और सतगुरु भाषा समझ ले सो हमारा परिवार। जो हमारे परमात्मा के ज्ञान को समझ लेता है, सतगुरु के ज्ञान को समझ लेते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो वो हमारा परिवार है, वो हमारे भाई बहन है, वो हमारे बच्चे हैं। और जो इस भाषा को इस ज्ञान को नहीं समझते हैं वो तो मनुष्य है। पुण्यात्माओं हमने, क्योंकि शरीर मनुष्य का है, कर्म मनुष्य के उनके भी नहीं है लेकिन मनुष्य कहलाते हैं, अब हमने मनुष्य से देवता बनना है, मनुष्य से हमने देवता बनना है, और उसको सतगुरु ही बना सकते हैं। मानुष से देवता किया करत न लाई बार, ये सतगुरु ही कर सकता है। अब मानव तो वो भी हैं जो सारा दिन पाप करें, खोटे खोदें, आप जैसे नजर आएंगे, और एक आप हैं, आप पाप नहीं कर सकते, 100 बार सोचते हो किसी का बुरा करते समय, तो आप भी मनुष्य हैं और वो भी मनुष्य। तो हंस और बुगला एक कैसर, एक सरोवर पर हंस और बुगले दोनों हो, उनकी पहचान बताई जाती है कि बुगला तो जाते ही मछली का दुश्मन होगा और बुगला नहीं और हंस नहीं होगा, खड़ा रहेगा, वो छुएगा नहीं उसको। ऐसे ही आप कहीं खड़े हो, भक्त हैं, और दूसरा दूसरे भी व्यक्ति खड़े हैं, सामने शराब की दुकान दिखी, जब वह पहुंचेगा को जमा देख दिए पौवा, और भक्त उधर देखेंगे भी नहीं, तो ये समझ ले वो तो बुगला है, उसने तो मछली मार ली, और हंस उसकी तरफ नहीं देखेंगे। हुक्का पीवे बीड़ी पीवे ले भाई ला ले, तू भी पिला ले, तो भक्त नहीं छुएगा ना भाई, बस मैं नहीं पीता हूं। तो ये हंस और बुगले की पहचान हो जाएगी, जो इन बुराइयों को त्याग देंगे वो मनुष्य, फिर वो हंस हो जाएंगे। तो उन वो कैसे होंगे भाई? युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आने, निर्मल कैसे होगे सतगुरु लगे निकान। यानी सतगुरु के विचार तुम तक पहुंचे नहीं तो आपकी ये बुराई छूटेगी कैसे, आपकी ये अपराध कैसे छूटेंगे? जब तक आप संत सन में नहीं आओगे, आप सत्संग में नहीं आओगे। अक्षमाशील तिस नगर में सत्सुकृत संतोह से चल हंसा तिस भूमि बस जीवित मुक्ता मोख। शंका डायन साल सब सोल शरीर मिटंत धोखा धुंधर जाते है जब भेटे सतगुरु संत। कबीर पुरुष की भगती करते संत सुजान गरीब दास सत भक्ति कर पहुंचे देश अमान। कहते हैं परमेश्वर कबीर जी की भक्ति सुजान संत यानी अच्छी आत्माएं ही करती हैं, और गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि परमात्मा की सत भक्ति हम करके शतलोक चले गए और आपके लिए भी संकेत देकर चले गए। अब प्रश्न चल रहा है कि मन तू चल रहे सुके सागर, मन तू सुके सागर बसरे भाई और नहीं ऐसा ही असरे। यहां की जो भी आपकी प्रभुता है वो आपके पूर्व जन्म के संस्कारों से है और वो संस्कार जिसमें आपके पूर्व समाप्त हो जाएंगे आप यहां नहीं रह पाओगे। इसके उपरांत आप चले गए स्वर्ग में, वहां कोई देव पद भी प्राप्त कर सकते हो, और जब आपका समय पूरा हो जाएगा आपके पुण्य वहां क्षीण हो जाएंगे समाप्त हो जाएंगे तुरंत आपको फिर वहां से नेक्स्ट जीवन फिर नरक में जाओगे। नरक के बाद क्योंकि पुण्य और पाप दोनों भोगने पड़ेंगे आप जी को जब तक आप परम पिता परमात्मा की सत भक्ति नहीं करते। उसके उपरांत आप नरक गए, नरक के बाद फिर आपका कोई संस्कार है पशु योनि का यहां आए, फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के इन कष्टों को भोग कर आपको फिर कोई मानव शरीर मिल गया, उसमें फिर यू प्रोसीजर शुरू। मां के पेट में दुख, बाहर आने के बाद फिर उसके बाद फिर हमारी जो समस्याएं हैं, जब तक बच्चा बोलने योग्य नहीं होता, जब तक बालक बोलने योग्य नहीं होता तब तक वो अपने दुख को नहीं बता सकता। अब बच्चा पालने में लेटा लेटा रो रहा है और पहला के क्या करते, ये हमारी माताएं और बुजुर्ग बेबे बहने हाथ से ही सिलाई करते थे अपने कपड़े की, मतलब फटे पुराने की, तो कई बार सुई रह जाती कपड़े में और उसके ऊपर बालक लुटा दिया लेटा दिया पालने में। अब बालक के वो सुई चुभ रही है और माता सोचे है बालक यू रो है ना सुहा दो, ऊपर एक एक कपड़ा और घेर कर लूंगा, सो जा। उसकी उसने मालूम नहीं तो रो क्यों रहा, उसका दर्द हो रहा, बहुत पीड़ा हो रही है, बालक के पेट में दर्द है और मां ने सोचा भूखा है, पकड़ कर मुंह 3-4 चम्मच और दूध के डाल दे उसके और फिर लुटा के घेर कर कपड़ा सो जा। अब वो कष्ट कितना उस बालक को बोल नहीं पा रहा बेचारा। ऐसे ही बहुत प्रकार की यातनाएं हम झेल चुके हैं जो थोड़ा सा युवा होने के बाद हम सारे भूल जाए। ये हमारे अंदर एक काल ने एक और ऐसा ढीठपना पैदा कर दिया, हम दुख वो भूल जाते हैं पीछे से कितना कुछ दिक्कत हमें आई है, तो उसको याद दिलाना जरूरी होता है। परमात्मा हमें वही याद दिलाते हैं कि अब तो चल निकल गया इसमें तो मान लिया तो सुख, और फिर आओगा ये कोल्लू, फिर इस कोल्लू में फिर दिया जाएगा तू और फिर वही समस्याएं खड़ी होगी। इससे बचने के लिए क्या तरीका क्या क्या समाधान है वो बताया जाएगा इस सत्संग के माध्यम से। पहले गए ना बावड़े रहते भी सब जाए, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। पहले चले गए वो तो गए, जैसे तरवर से पत्ता टूट जा बहुर नहीं लागे डार, वो जो चले गए वो शरीर उसी शरीर में आपके परिवार में वो नहीं आ सकती। जैसे आपका पिता है माता है बहन है अब अन्य शरीर धारण करके आगे कोई पशु बनकर कोई पक्षी बनकर बैठी रहो, हमने उससे क्या लेना देना, क्यों मां हमने पता नहीं ये कौन है। तो इसलिए हम बताते हैं कि पीछे गए पहले गए ना बावड़े ताकि आगे बता जाए तुम्हारे को कि वहां ऐसी समस्या है। और रहते भी सब जाही बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की भक्ति के बिना इस जीव का कहीं ठिकाना नहीं। जैसे आप जी समझ रहे हो कि मैं ये मौज मात्री है क्यों, जिनके पुण्य अधिक है वो अच्छी पोस्ट प्राप्त है, समय पर हर वस्तु उपलब्ध है, गुट्टी लाओ, सिनेमा देखो, ताश खेलो, नाचो गाओ, खाओ सो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये समय पूरा होते ही फिर गधा बनेगा, गधे का समय पूरा होते ही फिर कुत्ता बनेगा, कुत्ते का जीवन पूरा होते ही फिर और 84 लाख प्रकार की योनियों में ऐसे आप की चला चली बनी रहेगी। स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग से वापस आओगे और ये शरीर आपका अवश्य छूटेगा, ये बिना पता ये छूट कद जा, इसका ये भी नहीं मालूम। अप्रोक्सीमेशन से हम जी रहे हैं, आइडिया अंदाजा लगा रहे हैं अभी तो और शायद इतना समय और रहेंगे हम, नहीं ये तो आपकी अपनी सोच है, देखा देखी, इसका ये नहीं पता कब चले जाए। तो हमने क्या देखना है कि ये सतलोक जाए बिना हमारा ठोड़ ठिकाना नहीं है, यहां पर यहां अपना निज स्थान नहीं है। आज हमने कोठी बना ली, वह अपनी मान ली, उससे के ऊपर गद मद एक दो एकड़ जमीन मोल ले ली, उस पर झगड़ा करके लठम लट्ठा कतलेआम कर डाला। अरे अपना तो यहां शरीर भी नहीं है, काया तेरी है नहीं, माया कहां से हो। और चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो, इस शरीर को भी भूल जाए, मिट्टी है ये सोच ले मिट्टी है, और ये माया तेरी नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये फाइनल समझ लेना। लेकिन हमारे को जीव ऐसा बना दिया काल ने, हमारा ऐसी स्थिति होगी हमारे जीवन की, हमारी बुद्धि की, बगैर तत्व ज्ञान के, जैसे भैंस का काटड़ू मर जा बच्चा और व्यापारी लोग उसमें भूस भरवा दिया करें उसके चाम में, 8 मास निकाल के फेंक देते और एक पूछड़ छोड़ देते धूम, और भैंस उसको अपना बच्चा मानकर उसके पीछे रा 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 साथ लेकर चल पड़ेगा और भागती चलेगी उसके साथ साथ, किधर टांग देगा वहीं खड़ी रहेगी। तो उस मिट्टी उस भरे हुए भूस के कवर को उस भैंस की बुद्धि इतनी है वो पहचान नहीं पा रही, तेरे इसमें के है अंदर के सांग है इसमें, इतना बच्चा नहीं है। तो आज हम इस काल भगवान ने ऐसे बुद्धिहीन बना दिए, हमने ये मिट्टी के खिलौने मिट्टी के सारा साजबाज जैसे मकान है, कार है, कोठी है, बेटा और बेटी है, इसमें काल ने ऊपर चाम लाकर अंदर हड्ड मांस और युगंध भर के हमें दे दिया, ये मेरा है, हाय मेरा है, हाय मेरा है, हाय मेरा। और कल उन तो पहले आपकी मृत्यु हो जाए, आपके सामने वो खिलौने ही टूट जाते हैं, फिर कोई समझ में आती क्यों आवे, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी है कि जैसे उस भैंस के आवे तुम्हारा आवे, क्योंकि हमें वो ज्ञान ही नहीं, हम इससे आगे सोच ही नहीं सकते। ये अखिया बनेगी, ये मोतिया बिंद हटेगा परमेश्वर कबीर जी के तत्व ज्ञान से, और इस ज्ञान के बाद फिर ज्ञान भी हो जाएगा और भक्ति आपके अंदर प्रवेश नहीं हुई तो भी ज्ञान डटेगा नहीं। पुण्यात्माओं ज्ञान तो सभी बताया करते, फिर ये इतना समाज क्यों बिगड़ गया, क्योंकि उनके द्वारा बताई गई भक्ति में शक्ति नहीं थी, और साथ में भक्ति की शक्ति होगी, उस शक्ति से क्या होगा कि आपकी आत्मा में ताकत आवेगी, इस मन को धक्कारण की हिम्मत रखेगी, नहीं तो इसे बड़े बड़े ऋषियों के साथ निर्दुलम करवा दिए। पाराशर ऋषि वेद व्यास का पुत्र पिता, जिस व्यास जी ने 18 पुराण 11 ये श्रीमद भगवत गीता और पवित्र चार वेदों को लिखा, और उसका पिता पाराशर जंगल में साधना करने के लिए गया, 12-15 वर्ष 16 वर्ष तक खूब डट कर भक्ति करी, साधना की, और ये सोच कर आ गया मैं ऋषि बन गया, मैंने विकारों पर विजय पा ली। रस्ते में एक लड़की, एक नाविक की लड़की जो उसी की बेटी थी, अन्य कारणों से, जैसे उस कारण था उनका जो शुक्र था वो मछली ने खा लिया था पारासर्जी का, और उस मछली के अंदर वो लड़की उत्पन्न हुई थी, वो मछोदरी कहलाती थी, वह 15-16 साल की लड़की। अब वो उस मछली को एक मछियारे ने निकाल लिया था, उसको उसने काटा तो उसमें से वह लड़की निकली, अपनी बेटी रूप में उसको पाला पोसा था। तो कहते हैं वो लड़की फिर पिता की रोटी लेकर आई हुई थी, उसका पिता जो मुंह बोला पिता जो नाविक था वो नौका चलाता था, नौका चलाते थे किराए पे, दरिया से इधर वालों को उधर कर देते, उधर वालों को इधर कर लेते, कुछ उसके पैसे लेते थे। पिताजी खाना खा रहा था उधर से, वो पारा सरजी अपना पूरी साधना करके वापस आ गई थी, और उस नाविक से कहा कि मुझे जल्दी छोड़ के आओ परले पार। नाविक ने कहा महात्मा जी मैं अभी आहार कर लेता हूं और आहार करके फिर छोड़ाऊंगा, अब भोजन से उठना भी पाप होता है। तो ऋषि कहने लगा तेरी लड़की छोड़ाएगी मुझे, वो लड़की, अब उनको पता होता था मछियारों को वहां के जो नाविकों को कि ये ऋषि लोग इधर से आते हैं, ये एटम बम होते हैं, ये श्राप दे देंगे तो नाश कर देंगे। उसने अपनी बेटी से कहा बेटी छोड़ा, कहने का भाव यह है कि उस 12-13-14 साल वहां साधना करके आया, वह नकली साधनाओं से भी ये मन पापी को रोक नहीं सकते। तो वहां परमात्मा कहते हैं वाहु के बिंद से वेद व्यास और वाही वाहु के बिंद से मछोदरी, हरे हां महबूब कहता दास गरीब रही का सोदरी। तो उस ऋषि ने उस लड़की के साथ कुकर्म किया, उससे फिर व्यास जी का जन्म हुआ कुंवारी का, वह उसको कहीं छोड़ आई लोकलाज के डर से। तो कहने का भाव यह है कि इन ज्ञान बात बात तद कामना चले और इन नकली साधनाओं से ये मन पापी रोक नहीं पाओगे। कहने का भाव यह है कि जब तक हम परम पिता परमात्मा सतकबीर की भक्ति परम संत से लेकर नहीं करेंगे तो ज्ञान ज्ञान से भी बात नहीं बनेगी। क्या उस ऋषि को ज्ञान नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन वो सत्य भक्ति न्यारी होती है, कापन लाग जा शरीर सारा नुखड़ा होकर के, ऐसे पाप की तरफ जब भी मन चाहेगा तो भी नहीं ये कुकर्म कर पाएगा। इस तरह की जो परिवर्तन है वो सत्य भक्ति सत्य मंत्र से आएगा। चोरी करने की चेष्टा या घेराफेरी करने की चेष्टा कभी करेगा ये मन, कांप जाएगी आत्मा, कति हाथ ले जाएंगे आपके, वो समय आएगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तो आपकी भक्ति कमजोर है। ज्ञान 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 के साथ साथ समाधान भक्ति अवश्य होनी चाहिए। तो कहने का भाव यही है कि परमात्मा की भक्ति, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति हम करेंगे और परम संत से लेकर करेंगे तभी हम मोक्ष प्राप्त होंगे, पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अब जैसे जो साधना हम करते थे उन साधनाओं के परिणाम स्वरूप स्वर्ग लोक महास्वर्ग तक चले जाते हैं, और जब तक हमारा कहते हैं बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, जब तक हमें सतलोक की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम सथाई नहीं हो सकते, दुख रहित नहीं हो सकते और पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अब जैसे गीता ज्ञान दाता 4:5 में कहता कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता जो भगवान है, पर ब्रह्म है ये, वैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है, तो ये कह रहा है कि मेरी भी जन्म मृत्यु होती रहेगी, तेरी भी होती रहेगी। तो इसे से दुआ की गीता ज्ञानदाता 8 अध्याय के 13 श्लोक में कहता है ओम इति एक अक्षरम व्याहरण ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण और यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मेरा एक ओम मंत्र है, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, एक अक्षर बस, नथिंग एल्स, और नहीं। और इसकी जो अंतिम सांस्तिक साधना करता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त करता है। ओम नाम के जाप करने वाला भी सथाई नहीं, क्योंकि ब्रह्म लोक जाता है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यांत, ये सभी पुनर्वर्ती में है, जो ब्रह्म लोक में चले गए उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन भगवानों का विवरण है। क्षर ब्रह्म तो ये ब्रह्म है, क्षर पुरुष तो ये ब्रह्म है जिसकी अभी आपको स्थिति बताई, और अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष है ये परब्रह्म है, ये भी नाशवान है। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के ही श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते, वो वास्तव में श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है, यानी वास्तव में वही भगवान कहलाता है और वही तीनों लोकों में, ये लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबके संस्कार भी वही देता है, और वो वास्तव में अविनाशी है। तो हम किस मालिक की भक्ति करें, किस प्रभु की साधना करें जिससे हमारा जन्म और मृत्यु का रोग कटे, उस वो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिसके विषय में अर्जुन, मैंने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि तत्वब्रह्म को जानकर अखिल सारे ब्रह्मांडों को, सारे अखिल यानी सारे ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, अध्यात्म ज्ञान को समझने के उपरांत केवल साधक जन्म मृत्यु से छूटने का ही, जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करता है और कुछ वस्तु नहीं मांगता, तो वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्वब्रह्म, उसकी जानकारी होने पर और पूरा आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आने के बाद फिर यहां के खिलौनों से नहीं खेलता। अब हम क्या मांगने आते हैं भगवान के दरबार में, एक बेटा दे भगवान। जब बेटा मिल गया तो भक्ति करेंगे, नहीं तो चले और मांगांगे की तरह। परमात्मा कहते हैं कि तुम बालक हो, बालक बिल्कुल बालक, जो बच्चा मेले में जाता है तो वहां खिलौने मांगता है, और ना दिलावा पिता तो रो रो पा पीटे, और उसको खिलौना दिला दिया वो अंधे टूट गया, टूट गया वो फिर रोए, को बालक ने पकड़कर गिर दिया कि तो टूट गया तो रोए, यानी वो खिलौनों से खेल रहा है क्योंकि वो बालक है। ऐसे ही आप इन खिलौनों को मांगने आते हो और वो मिल भी गया कहीं से और वो फिर टूट गया, यानी वो मृत्यु होगी, फिर टक्कर मारोगे, दूने नास्तिक होगे। तो ज्ञान बिना, जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होगा, आपका मोतियाबिंद हटे नहीं, और मोतियाबिंद हटे बिना आप पहचान नहीं सकते। अब देखो कितना ही अच्छा आदमी दिखाई देता है, शिक्षित भी है, बड़ा अध्यापक है या डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है या बड़ा कोई पोस्ट प्राप्त है, वो बहुत अच्छा नजर आता है, बहुत बुद्धिमान नजर आता है, लेकिन अध्यात्मक मार्ग की उसका बुद्धि अंश भी नहीं है उसके अंदर, उसका मोतियाबिंद है, और वो मोतियाबिंद हटेगा इस तत्व ज्ञान से, यानी सत्संग माने से। तो जब तक हमारा ये मोतियाबिंद समाप्त नहीं होगा, हम जीव संज्ञा में रहेंगे, और हमने जीव से पीव संज्ञा में आना, पीव माने देव, प्रभु, प्रभु तो हम नहीं बन सकते, लेकिन उसके मिलते जुलते उन गुणों को ग्रहण करेंगे। तो इसलिए हम सत्संग में आते हैं कि हम इंसान से देव बने, देव माने हंस बने, हम बुरे और अच्छे की पहचान के साथ साथ हम उस पर दर्द हों, जैसे हंस होता है, मर जाएगा भूखा हंस, मछली नहीं खाएगा तो उसको भगवान भूखा मरने भी नहीं देता। ऐसे ही आप दृढ़ विश्वास करके डटोगे, दृढ़ होगे, अपने मन पापी ने रोकोगे कि बुराई करने का समय आता है, वहां रोक कर उसने, फिर देखो आपको फिर वस्तु वो मिलेगी कि नहीं, और एक नंबर से मिलेगा मालिक ना जाने से, एप्पल में किरा के कर दे वो दाता, कहते हैं साहेब से सब होत है, बंदे से कछु नाही। राई से वो पर्वत करे और पर्वत से फिर राई। परमात्मा सब कुछ कर सकता है, इंसान से कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकता वो। तो हम क्यों ना उसी समर्थ की शरण ग्रहण करें जिससे सब कुछ हो, और उसको हम राजी करें, उसको प्रसन्न करें, उसकी शरण में रहें। तब हमारे ऊपर आने वाली आपदाएं भी टलें, हमारे दुख भी दूर हों और पूर्ण मोक्ष भी हमें प्राप्त हो। तो क्या मांगने आते हैं हम? परमात्मा कहते हैं क्या मांगूं? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन जब तुझे पूर्ण उस ब्रह्म के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाएगा और अध्यात्म पूर्ण संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, फिर प्राणी केवल जीवन मरण से छूट जन्म मर जरा मरण यानी बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। अब बुढ़ापा सबसे बड़ा खतरनाक है इस प्राणी के लिए, और मृत्यु तो सबसे बूंदी और उससे बुरा बुढ़ापा, और ये दोनों आपके लिए कंपलसरी, अपने लिए कंपलसरी, ये दोनों टल ही नहीं सकते। तो यहां सुख क्या का मान रहे हो? मान लिया आपने 50-60 साल 70 साल की तरह डले डोलिए गुटी छुट्टी लाई, मौज भी मार ली, आया बुढ़ापा बैरी, उठा जा ना बैठा जा, अदरंग मार गया तो वो और बुरा हाल है, कितने गोडे दुखे कितने कड़ कमर में दर्द, कहीं जाड़ पड़वानी कितना आंख बनवानी, 24 घंटे भड़क बनी रहे, कोई करके ठीक बोला नहीं तो दुख बैठ कर रोना पड़े, इतना कैर टूटेगा तेरे पे, और यू आयु बार टूटेगा, फिर इस सांग में जुड़ क्यों रहा है तू? यो क्या क्या ढमढमा हुआ भाई? जन तो आज मान ले जन्म मनुष्य का हो गया, तो इसके अंदर जीवन पहले तो मनुष्य पूरा ब्रह्मांड में कोई सुखी नहीं, और हम मनुष्य को इसलिए सुखी मानते हैं दूसरे प्राणियों की तुलना में, लेकिन जीव मनुष्य जीवन में जब कोई सुखी पा जा मेरे पास ले आना। जिस पृथ्वी पर अब 21 ब्रह्मांडों में भी कोई सुखी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुखी नहीं है, आप तो सुखी कहा? तो हम यहां के मांगना है, हाँ इतना सुख जरूर मिलेगा आपको, जैसे आपके प्रारब्ध में कोई दुख भयंकर आ गया है उसको टाल देगा दाता। वो वैसे तो दुख था ही, लेकिन वो भारा दुख और था, उनको टालेगा इसलिए कि आप पर विश्वास हो कि भगवान है पृथ्वी पर, परमात्मा के गुण सुनते थे उसे वो बेनिफिट मिलते हैं, और फिर वो मिलते हैं तो फिर ये भी विश्वास होगा मोक्ष भी देगा वो। अब यहां कोई राहत आपको मिल नहीं रही, वो बात बना सतलोक जान की कद्दे की समझ बना जब बुद्धिमान होता है क्यों बंडाव है वे, मतलब क्योंकि उनके पास समाधान नहीं है। तो क्या बताते हैं कि यह मान लिया आपने बालक मांगा, लड़का मांग लिया, चलो दे दिया बाप परमात्मा ने, दया भी कर दिया पे बेटा या बेटी संतान, क्योंकि नी संतान तन्यो कहे भगवान मेरे छोरा होते छोरी एक हो जाओ, जो 10-15 साल की तक घूम लिया, मान लिया परमात्मा ने, वह सुन भी ली तेरी, हो गया। जब तक आप इस स्थिति पर नहीं आओगे कि क्या मांगो कुछ ठिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, 1,00,000 बेटे थे रावण के, और 1,25,000 रिश्तेदार एक से एक पहुंचा हुआ धनी, और उस रावण का आज दीवान बाती, उसका नाम और निशान नहीं रहा। 1,00,000 का पिता गया जगत में ऊत, ऊत माने जिसका आगे पाछे कुछ ना बच्चे, 1,00,000 बेटे हो कभी ऊत न पूत का आकर ना, वो बगैर बेटे वाला होकर मरिया, उसके उससे पहले सारे बच्चे मारे गए उसके। तो परमात्मा कहते हैं क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, उस रावण का दीवान बाती। परमात्मा कहते हैं सत्य नाम गहो नित मत यही, मेरा तो आपको यही एक विचार सलाह है कि भाई सत्य नाम निज नाम की भक्ति करो। तो पुण्यात्माओं, हमने इस सत्संग के विचारों से ये निष्कर्ष निकालना है। अब जैसे हमने जन्म मृत्यु के रोग को समाप्त करवाना है, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नष्ट नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। इसको आप अपने बिल्कुल पहले कहते थे ना, पल्ला गांठ लगा लो, यानी ऐसे स्थान पर नोट कर लो जिसको आप डेली याद कर सको। और यहां हम सुखी हैं ही नहीं, और आज मान लीजिए आपके पास अच्छा अच्छी संपत्ति भी है, अच्छी संतान भी है, और आपका शरीर भी ठीक है, मृत्यु अवश्य होगी। जिसको इस संपत्ति को तू अपना मान रहा, संतान को, ये तेरी नहीं है, ना तेरे साथ रह गया, तो ये तो छोड़नी पड़ेगी। तो मान लीजिए हमने ये तो पक्की गांठ मार लो, ये तो एक विशेष उद्देश्य बनाओ कि मृत्यु तो होगी तो है ही, लेकिन हमने फिर मृत्यु होने के बाद दोबारा इस कोल्लू में नहीं डलना, इस अरहट के कुएं में नहीं पड़ना। इसलिए मन कर्म वचन तय, वो टारगेट बनाओ कि हम सतलोक जाएंगे। सतलोक उस समय जाएंगे जब हमारा यहां से कति हृदय लेगा, बेटा और बेटियों से, कार और कोठियों से, पूरी संपत्ति को आप अपना नहीं मानोगे कि मेरा है भी नहीं, लेकिन हम मान रहे हैं जीव संज्ञा मां कह, हमने ऐसे अपने आप को पीव बनाना है, यानी देव संज्ञा में लाना पड़ेगा। और जब हंस रूप में हम आ जाएंगे फिर सोचेंगे सारा, हम अच्छे और बुरे का, अपने और पराए का पूरा निर्णय करेंगे। तो हंस दशा में जब तक हम नहीं आएंगे फिर हम कितनी भक्ति कर ले, भक्ति का फल निष्फल नहीं जाएगा, वो तो आपको मिलेगा, क्योंकि फिर वो मिला कहां, स्वर्ग में चले गए, महास्वर्ग चले गए, फिर गधे बन गए। तो इस बीमारी से दफा हमने कटवाना है, इस रोग का तो निर्वाण हमने निवारण करवाना ही है कि जन्म मृत्यु फिर ना हो। तो उसके लिए जब आप यहां से चलोगे, शरीर त्यागने लगोगे, तो शरीर त्यागने लगोगे तब आपको अंत समय में भगवान की ये भक्ति याद रहनी चाहिए, और भक्ति के साथ, सिमरन के साथ साथ टारगेट ये वो दृढ़ रहना चाहिए। उसमें कोई बेटे और पोते में, संतान और संपत्ति में, सपने में भी आस नहीं रहे तुम्हारी। आपके साथ कई बार बनेगी, एक दो बार जो भगवान आपको तैयारी करवाएगा वहां चलने की, या तो स्वप्न में होगा या वैसे झटका आपको हल्का सा कोई देगा भगवान। तो आपकी पहचान जब उसमें आपकी पहचान होगी कि आप विचलित होते हो या इसको याद रखते हो, कोई दुर्घटना आती है हल्की सी, उसमें एक तनों का हायर इमाम मर गया, एक अपना सुमरण करे, ये बंदी छोड़, फिर सांस के सिमरण पा जा, या स्वप्न में कोई बात ऐसी घटना घट जाती है जैसे इसे बूढ़े बूढ़े शकल के दिखन लग जा, तो उसमें किसको याद करते हो आप, ये रिहर्सल होगी आपकी, आपकी जो है ना परीक्षा होगी। पहले वागर दे कच्चे इम्तहान, कच्चे एग्जाम होते थे पहले, छह माही, फिर नौ महीने में, फिर लास्ट में होते थे पक्के। तो एक दो आपका कच्चा एग्जाम भी परमात्मा लेगा ताकि आप कितने नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो उन उसके बाद फिर आपने सावधान रहना, पक्के में फेल नहीं होना, फिर पक्के फेल हो जाओगे। तो हमने भी इन बातों को, परमात्मा कहते हैं मौला बैठा मोर्चे और देखे जन की भेड़े, द्वादश कोटियम किंकर जहां एक नाम की खेड़। परमात्मा आपको देख रहा है, आप जिस मोर्चे में, युद्ध में, जिस लड़ाई में आप लड़ रहे हो, आप यहां अज्ञान के साथ ज्ञान से लड़ रहे हो और काल के साथ लड़ रहे हो। जब आपके ऊपर आपत्ति आवे कहते हैं 12 करोड़ यम के दूत भी आपको आकर घेर ले तो उस समय आप किसको याद करोगे? सिमरन करना श्वास का। परमात्मा आपको देख रहा है कि ये कौन सा हथियार उठाओगा। इवे माँ बाबू ने याद करा है, हाय माँ बचा ले, हाय बाबू पिताजी आ जाओ, मर गया भाई बचाइए, या वहां पर सिमरन शुरू करता है। कहते हैं द्वादश कोटि यम किंकर जहां, वहां एक नाम की खेड़ एक श्वास का सिमरन कर देने का उनका ऐसे ऐसी टक्कर, खेड़ माने टक्कर, जैसे टक्कर मार दी तगड़े व्यक्ति ने, बौद्ध आदमी दूर जाकर पड़े पशु, तो ऐसे कहते एक नाम के श्वास के सिमरन की जो टक्कर होगी, जो चोट होगी, वह उन 12 करोड़ में फालतू रहेगी। तो हमने ऐसे ही अपने जीवन को सफल बनाना है। तो परमात्मा कहते हैं ये बातें कहन सुन की ना भाई कर पाड़ने की है।